کربلا ہماری جنت، کربلا روشنی ہے، کربلا ہماری جنت، کربلا روشنی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ یہ ہے پیارے بچوں کا ایسا پروگرام جہاں پر ہم جانیں گے کربلا کے بارے میں، اور ہوں گے ایک نئے مہمان، پڑھیں گے نوحے، ہوں گے پانچ سوال، سوال ہوں گے میرے، جواب ہوگا آپ کا۔ اس طرح ہم جانیں گے کربلا کے بارے میں، کیونکہ کربلا ہے ہماری جنت۔ السلام علیکم انکل۔
علیکم السلام،
کیسے ہیں آپ؟
الحمدللہ۔
آپ بتائیں عاشورہ کسے کہتے ہیں؟
بیٹا، عاشورہ جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کے پہلے مہینے فرسٹ منتھ کی 10 تاریخ کو ہم روزے عاشورہ کہتے ہیں۔ روزے عاشورہ یعنی 9 دن کے بعد جو 10واں دن ہوتا ہے اس کو ہم روزے عاشورہ کہتے ہیں۔
میں آپ کو عاشورہ کا کچھ بتاؤں؟
جی،
ہمارے امام تھے، وہ صبح صبح اٹھے تھے، تو پھر ہمارے امام نے کہا اپنے بیٹے کو، علی اکبر کو، کہ آپ جا کر اذان دو۔ تو پھر امام کے بیٹے نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر جا علی نے جا کر اذان دی، اور پھر سب لوگ آئے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ تو یزید کے جب ساتھیوں کو پتہ چلا، تو یزید کے ساتھیوں نے آ کر کہا کہ یہ تو سب سے بہتر کام ہے کہ ہم انہیں تیرے مار دیں۔ تو پھر تیرے ماری ماری تو کچھ لوگ شہید ہو گئے۔ تو پھر ہمارے امام نہیں چاہتے تھے کہ وہ سارے جنگ کریں جنگ کریں، تو پھر امام نے کہا ہمارے اوپر یہ لوگ جنگ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ تو پھر امام نے کہا کہ سب سے پہلے جنگ کرنے کون جائے گا؟ تو پھر امام نے اپنے غلام کو کہا کہ سب سے پہلے آپ جاؤ گے جنگ کرنے کے لیے۔ وہ ہو گیا۔ پھر امام نے کہا اب آپ میرے ساتھی ہو، آپ جاؤ گے جنگ کرنے۔ پھر امام نے دوسری دفعہ کہا کہ میرا دوست جائے گا، تو پھر وہ ان کے دوست تھے اور انہوں نے جنگ کی۔ پھر آخر میں فیملی گئی امام کی، اور سب سے آخر میں ہمارے امام گئے۔ اور پھر امام نے اس لیے سب کو سب سے پہلے بھیجا تھا کیونکہ وہ امام کی مدد انہوں نے 3 دن سے کی، اور 3 دن پانی بھی نہیں پیا۔ اور وہ امام یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ جب جنت میں جائیں تو وہاں سے ہمارے پروفٹ کا پانی پئیں۔
ماشاءاللہ، آپ کی معلومات بہت اچھی ہیں، اور بہت خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو یہ اللہ کا کرم ہے کہ ماں کی گود میں ان کو کربلا بتائی جاتی ہے۔ آپ کی اتنی معلومات امام کے بارے میں، امام کے فیملی ممبرز کے بارے میں، امام کے مشن کے بارے میں آپ کو اتنی معلومات ہیں، اور آپ اتنے اچھے طریقے سے پوچھ رہی ہیں۔ اصل میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پروفٹ تھے، ان کو خالق کائنات نے امام حسن اور امام حسین، جو کہ آپ کی بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ نواسے خداوند تعالیٰ نے عطا کیے، اور اس کے ساتھ ان کو پیغمبر اکرم کے بیٹوں کے طور پر دنیا میں متعارف کروایا اور بتایا کہ یہ نسل رسول ہیں۔ تو امام حسین علیہ السلام بی بی فاطمہ کی گود میں، جو کہ ہمارے پروفٹ کی پیاری بیٹی ہیں، ان کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، اور پیغمبر اکرم نے دنیا کو اپنے حسین کا تعارف اس طرح سے کروایا کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ ہمارے بچے بھی، ہمارے بوڑھے بھی، بزرگ بھی، نوجوان بھی، ساری دنیا امام حسین کے لیے اتنی محبت کیوں رکھتی ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کربلا میں آئے تو وہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کے آئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ امام حسین کے 6 ماہ کے بچے کا نام علی اصغر تھا، آپ کی تقریباً 4 سال کی بیٹی کا نام سکینہ تھا۔ تو امام حسین نے ہر سن و سال کے، ہر عمر کے لوگوں کے ساتھ کربلا سے گفتگو کی ہے اپنی قربانیوں کے ذریعے سے۔ حبیب ابن مظاہر بوڑھے تھے، جناب مسلم ابن اوسجہ جو آپ کے ساتھی ہیں وہ بوڑھے تھے، और आपके बेटे हजरत अली अकबर जो हैं वो जवान थे, फिर बीबियां थीं, आपकी बहन जनाब जैनब कुबरा थी। तो इस तरीके से करबला को आका ने इस तरह से दुनिया के सामने पेश किया कि हर उम्र के लोग करबला से इस तरह मुतासिर हैं कि जैसे आपके लिए देखें, याद करने के लिए अली असगर का जिक्र है और बीबी सकीना का जिक्र, और बच्चे जो हैं वो ये रोज़े आशूर इसी तरह से शुरू हुआ कि शबे आशूर इमाम के साथियों की इबादत में गुजरी, सारी रात इबादत करने के बाद जब सुबह आशूर हुई करबला की तो आपने अपने बेटे अली अकबर से कहा कि अजान कहो, तो सुबह की नमाज के लिए जब हजरत अली अकबर ने अजान कही तो उस अजान से ही हम अपने रोज़े आशूर की याद को शुरू करते हैं, और फिर रोज़े आशूर में वो जो आमाल हैं उनमें भी मौला को याद करते हैं। और आशूर का जो असल पहलू है, जो असल चीज़ है, वो ये है कि आप जैसे जैसे अब बड़े होंगे इन तालीमात में, इन फिजाओं में, तो ये तालीमात एक इंसान को एक करबलाई और एक हुसैनी, वो एक बड़ा अच्छा फारसी का जुमला है कि अनहा के रफ्तन कारे हुसैनी करदांद व अनहा के मूंदन बायद कारे जैनबी बे कुनंद। तो आप लोग जो हैं वो इंशाल्लाह जनाबे जैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के कारवां को लेके आगे बढ़ेंगी आप लोग। तो इस तरीके से ये जो याद है हमारे अंदर, सांस सांस में याद है, खून की गर्दिश इंसान के जिस्म के अंदर वो करबला की याद के साथ है, तो इस तरीके से ये हमारी तरबियत का जरिया है। तो रोज़े आशूर में ये हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, जैसा कि आपको अभी मालूम भी है, आपने कुछ बातें उनमें से की भी हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे प्रॉफिट थे, इमाम हुसैन के नाना थे, ग्रैंडफादर थे, उनका जंग में ये होता था कि वो अपने अहले बैत को आगे करते थे। नहजुल बलागा में है कि जब जंग होती थी तो अपने असहाब को पीछे रखते थे, अपने अहले बैत को आगे करते थे, लेकिन करबला में इसके बरअक्स इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अहले बैत को पीछे रखा, असहाब को पहले भेजा जंग के लिए। इसलिए कि फ़र्क ये था कि यहाँ पर जिसको भी रहन जिसको जो भी करबला में इमाम हुसैन के साथ है उसको तो शहीद ही होना था ना। तो अब जो जितनी देर ज़्यादा जिंदा रहेगा वो उतनी देर ज़्यादा प्यासा रहेगा, उतनी देर करबला की गर्मी में भूख और प्यास की सख्तियाँ और अपने प्यारों के जख्मों को अपने दिल पे सहेगा। तो इमाम हुसैन ने चाहा कि उनके जो असहाब हैं वो पहले करबला की जंग में पहले आगे बढ़ें। तो मैं आपको मीरनीस के दो तीन मिसरे बड़े खूबसूरत सुनाता हूँ और आप समझ जाएंगी, जितनी मोहब्बत से आपने गुफ्तगू की, जितने खूबसूरत तरीके से आपने सुना, तो मेरा ख्याल है आप यकीनन समझेंगी कि इमाम हुसैन के जो साथी थे कि अल्लाह ने दिल इनके वफा से बनाए थे और जिसमें पाक खाके शिफा से बनाए थे, दस्ते करम सखाओ अता से बनाए थे, और सीने इनके खमीरे सिदको सफा से बनाए थे, और ये लिख दिया था रोज़े अजल सरनविश्त में, पहुँचेंगे ये हुसैन से पहले बहिश्त में। तो इमाम हुसैन ने तो बाद में शहीद होना था, तो ये पहले बहिश्त में पहुँच कर साकिये कौसर के हाथ से जामे कौसर लेकर अपनी प्यास बुझाकर सैराब होकर इमाम हुसैन का इस्तकबाल करें। इमाम हुसैन ये चाहते थे कि मेरे साथी प्यासे ना रहें बल्कि जाएं और साकी कौसर के हाथों से हौज़ कौसर पर कौसर से पहले सैराब हो जाएं, मेरे जाने से पहले सैराब हो जाएं। तो ये वजह थी कि आपने अपने साथियों को पहले भेजा और अपने फैमिली मेंबर्स अपने अहले बैत को बाद में भेजा।
बाद में भेजा। अंकल हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है?
जी
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो अंकल हमें कौन कौन से काम करने चाहिए?
रोज़े आशूर, बेटा बात यह है कि रोज़े आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में, हमें उस गम में डूब कर इस दिन को मनाना चाहिए। वैसे आमाल रोज़े आशूर बयान हुए हैं, उसमें ज़ियारत है, आमाल हैं, और आमाल में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो गम है उसको इस तरह तरीके से मुजस्सम किया गया है कि वो उसमें भी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में रहें। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने छोटे से बच्चे को ले पानी पिलाने के लिए ये कहकर जनाब अली असगर की वालिदा से कि मैं इसको लेके जाता हूँ, शायद दुश्मन इसको पानी पिला दें, तो आप लेके गए, लेकिन उन्होंने
नहीं थी, और बड़ी सी तीर बीमारी थी उनके
हाँ,
बदन पर।
उनके वो तीर का निशाना जो था वो गले पे लगा, और मौला का बच्चा जो था 6 माह का वो मौला के हाथों पर शहीद हो गया। तो उसके बाद फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हालत बड़ी अजीब हो गई कि वो जब बच्चा शहीद हो गया तो आपने इस तरह किया कि वो जो गले से खून टपक रहा था अली असगर के, वो आपने हाथ में लेके उसको अपने चेहरे पे मला, और फिर मदीना की तरफ रुख करके प्रॉफिट को अपने नाना को मुखातब करके कहा कि रोज़े कयामत आपसे मैं इसी तरह मुलाकात करूँगा। और उसके बाद अपने 6 माह के बच्चे को लेकर मौला खेमे की तरफ गए, लेकिन मौला ने सोचा कि मैं अली असगर की माँ को ये छिदे हुए गले के साथ अली असगर कैसे दिखाऊंगा। तो फिर सोचा कि जहाँ पे लाशें पड़े हैं,
वहां
जहाँ
पर
पे
मैं
वहाँ
इसे
पे
भी
अली
शिफ्ट
असगर
कर
को,
दूं।
हाँ अली अकबर के पास, अली अकबर के लाशें के पास या दूसरी लाशों के पास रख दूँ, तो फिर आप वहाँ आए, उसको हम गौदाले कत्लगाह कहते हैं जहाँ लाशें पड़े थे। लेकिन फिर वहाँ आके सोचा कि अली असगर की माँ कहेगी कि आप बड़ों की लाशें उठा के ले आए तो मेरे छोटे से बच्चे का लाशा क्यों नहीं लेके आए। तो फिर आप वहाँ से खैमे की तरफ गए, और फिर इस तरीके से मौला खैमे से लेकर वहाँ तक आपने 7 चक्कर लगाए। हुसैन कैसे दिले पाश पाश ले जाएं, उठा के हाथों पे बच्चे की लाश ले जाएं, तड़प रहा है जमाना, हयात रोती है, हुसैन चुप हैं मगर कायनात रोती है। और उसके बाद चेहरे पे असगर का खून लगाए हुए खड़े हैं सैयदे मजलूम सर झुकाए हुए, जनाजा फूल सा हाथों पे लेके जाते हैं, कदम बढ़ाते हैं, रुकते हैं, लौट आते हैं, जाते हैं दरवाजे पर, फिर हौसला नहीं होता, फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरीके से 7 चक्कर लगाकर आप जब दरे खैमा पर गए तो आपने अली असगर की जो मामा थीं, वालिदा थीं, जनाबे रुबाब, उनको आवाज़ दी। तो जनाबे रुबाब जो हैं वो आईं, और उन्होंने आके शहजादा अली असगर को, उनके गले को, छिदे हुए गले को, टपकते हुए खून को, आका के खून आलू चेहरे को देखा, और बड़ी हसरत से कहा, असगर अमिसलो का यूनहर, ए असगर क्या तेरे जैसे बच्चे भी नहर किए जाते हैं। आपने नोट किया होगा जब आपने अपनी मामा के साथ आमाल किए तो आप चंद कदम आगे बढ़े फिर चंद कदम पीछे हटे, तो इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो मंसर खैमे की तरफ बढ़ना फिर वापस आना, वो तमाम चीज़ें इंसान की निगाहों के सामने आ जाती हैं। तो आप छोटे छोटे बच्चे, आप आज के दिन शहजादा अली असगर को याद करके रोएंगे। फिर वो मंजर भी बड़ा अजीब था, जब आप खैमे से रुखसत हुए तो बड़ों ने कैसे रुखसत किया और आपकी छोटी सी बेटी ने कैसे रुखसत किया होगा। ये आप लोगों के लिए, करबला में हर उम्र के फर्द के लिए एक दास्तान मसाइब है। तो आप खेमे के दरवाजे पर आए और आपने आके अपनी बहन को आवाज़ दी, कहा, या उख्ती ज़ैनब ईतीनी बिसौबिन अतीकिन ला यरगबु फीहे अहदुम मिन अल-कौम लअल्ला उजर्रदा। ए मेरी बहन ज़ैनब, मेरे लिए पुराना लिबास ले आओ, इसलिए कि ये लोग मेरी शहादत के बाद मेरे बदन से लिबास लूट लेंगे। मैं चाहता हूँ पुराना लिबास पहन के जाऊँ ताकि ये लोग मेरे बदन पर लिबास छोड़ दें। तो ये आवाज़ सुनकर खैमे में कोहराम मच गया। आपको पता है, आपकी मामा ने आपको सुनाया होगा कि जब इमाम हुसैन छोटे से थे तो जन्नत से लिबास आते थे इमाम हुसैन के लिए। तो आज वही इमाम हुसैन आज पुराना लिबास मांग रहे हैं दर खैमा पर खड़े हुए। तो बीबी ने आका को बुलाया अंदर, और उसके बाद आका सब बीबियों से बारी बारी खुदा हाफिज आपने कहा। तो बीबी सकीना ने कहा कि बाबा आज के बाद मैं किसके सीने पर सोऊंगी। तो आपने कहा कि आज से आप अपनी मामा के सीने पे सो जाया करना। तो बीबी सकीना ने कहा कि मां, तो मेरा भाई अली असगर सोता है। तो आका ने फरमाया, मौला ने कहा आज रात से अली असगर मेरे पास होगा, तुम अपनी मामा के पास सो जाया करना। तो ये करबला के वाकयात हैं जो इंसान के जिगर को काट देते हैं। इंसान सुनकर मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। और इन्हीं वाक़यात में, इसी गम में, इन्हीं हालात में खानवादा पैगंबर की तालीमात के साथ आशनाई, इसी गम के माहौल में रहते हुए जब बच्चों की हो जाती है, तो जब वो बड़े होते हैं तो बेटियां हों तो वो जनाब ज़ैनब कुबरा के नक्शे कदम पर चलती हैं, बेटे हों तो वो इमाम हुसैन के, हज़रत अली अकबर के, हज़रत अब्बास के नक्शे कदम पर चलते हैं। तो इस तरीके से हमारी तरबियत जो है वो करबला के माहौल में होती है। और यही पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का मिशन था। आपने इसीलिए इमाम हुसैन का तारुफ इस तरीके से करवाया था और कहा था कि इन्ना लिल हुसैन हरारतुन फिल कुलूब ला तबरदु अबदा। हुसैन के लिए जो आतशेष्क है, जो मोहब्बत की लौ है, वो हर दौर में और से ज़्यादा और से और रोशन होती रहेगी। इसको दुनिया जितना भी बुझाना चाहेगी, ये शोला इश्क खामोश नहीं हो सकता, ये आग बुझ नहीं सकती। और ये आज दलील है कि इतना अरसा गुजर जाने के बाद हमारे छोटे छोटे बच्चे आज इमाम हुसैन को इस तरीके से याद कर रहे हैं, रोज़े आशूरा के माहौल में हैं और आप लोगों की तरबियत हो रही
है। अंकल जी, मेरी एक दोस्त खत लिख रही है, तो फिर आके हम वो पढ़ते हैं, ठीक है?
ठीक है।
हमारा दूसरा सेगमेंट मौला के नाम से।
करबला हमारी जन्नत, करबला रोशनी है।
मेरे प्यारे मौला, शहीद करबला इमाम हुसैन, अस्सलाम वालेकुम। आज का दिन हम सब के लिए बहुत दुख और गम का दिन है, क्योंकि आज आपकी और आपके जानिसार साथियों की दर्दनाक शहादत का दिन है। आज वो गमगीन रोज है जब जालिम यजीदों ने आपको, आपके भाइयों, बेटों, भतीजों, भांजों और प्यारे साथियों को 3 दिन की भूख और प्यास के साथ कत्ल कर दिया। मेरे मौला, आखिर ये क्या हो गया? क्यों लोग आप अहले बैत की फजीलतों को भूल गए? क्यों उन्हें याद नहीं रहा? हमारे प्यारे नबी, जो तमाम नबियों के सरदार हैं, जिन पर कुरान पाक नाजिल हुआ, आपके नाना जान हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम, जिन्हें खुदा का शेर कहा जाता है, जिनकी शान में कुरान की कई आयात नाजिल हुई, आपके प्यारे बाबा हैं, जनाब सैयदा, जिन्हें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जिगर का टुकड़ा कहते थे, और जिनके एहतराम में खुद हमारे नबी खड़े होकर इस्तकबाल करते थे, आपकी मामा हैं, इमाम हसन आपके भाई, और खुद आप जन्नत के जवानों के सरदार हैं, मौला हुसैन। ये जालिम लोग जिन्होंने 7 मुहर्रम को आप पर पानी बंद कर दिया और आज के दिन आपके साथ जंग की, आखिर क्यों आपके दुश्मन हो गए? यकीनन मेरे आका, ये लोग शैतान के दोस्त हैं, जो हर वक्त लोगों को बुरी बातें सिखाता है। ये लोग प्यारे रब के दुश्मन हैं। ये लोग नहीं चाहते थे कि आप जैसे इमाम की प्यारी बातों पर गौर करें। ये समझते थे कि इस तरह आपको मजबूर कर देंगे कि आप यजीद जैसे गंदे तरीन इंसान की बातें मान लेंगे और उसे उसके बुरे कामों पर नहीं टोकेंगे। लेकिन मेरे मौला, आप ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप तो कुरान के दोस्त थे, आप अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते थे, आप 3 दिन प्यासे रहकर भी बिल्कुल नहीं घबराए और जालिम यजीदियों से जंग की और उन्हें शिकस्त दे दी और बता दिया कि जो भी अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती करना चाहता है, वो बुरी बातों से बचे, अच्छे काम करे और जालिम से बिल्कुल ना डरे। मौला जान, आप यकीनन देख रहे हैं कि आज पूरी दुनिया में आपकी याद में मजलिसें हो रही हैं, जुलूस निकाले जा रहे हैं और इन जुलूसों पर यजीद के लोग हमले भी करते हैं, लेकिन आपके दोस्त और मानने वाले आप ही की तरह बिल्कुल नहीं घबरा रहे और सबको ये मैसेज दे रहे हैं कि मौला हुसैन का पैगाम बहादुरी है और हक पर चलने का नाम है। तमाम शहदाए करबला को मेरा सलाम। والسلام آپ کی کنیز۔
انکل آپ کو خط کیسا لگا؟
بہت اچھا لگا۔
ہمارا دوسرا سیگمنٹ بھی ہے سوال ہمارے جواب تمہارے۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ سوال ہمارے جواب تمہارے۔
کربلا ہماری جنت، کربلا روشنی ہے۔
کل کے سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال، امام حسین کا روزہ کہاں ہے؟ جواب ہے کربلا میں۔ دوسرا سوال، امام حسین پہ پانی کب بند ہوا؟ جواب ہے 7 محرم کو۔ سوال نمبر 3، امام حسین کے قافلے کے کون مؤذن تھے؟ جواب حجاج بن مسروق۔ سوال نمبر 4، امام حسین کی مشہور دعا کون سی ہے؟ اس کا جواب ہے دعائے عرفہ۔ اور آخری سوال، کربلا میں یزید کی فوج کا کمانڈر کون تھا؟ اس کا جواب ہے عمر بن سعد۔ آج کے سوال، روزہ عاشور کربلا میں اذان فجر کس نے دی؟ سوال نمبر 2، کربلا میں امام حسین کے غلام کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 3، امام حسین کربلا میں کس وقت شہید ہوئے؟ سوال نمبر 4، امام حسین کو کس حالت میں شہید کیا گیا؟ سوال نمبر 5، امام حسین کا سر کس ظالم نے کاٹا؟ تھینک یو انکل، آپ میرے پروگرام میں آئے۔
جیتے رہیں ماشاءاللہ، ہمیشہ کربلا کی تعلیمات کی فضاؤں میں رہیں، اور آپ کو اعلی اطہار کی نگاہ لطف و کرم نصیب ہو، اور ماشاءاللہ آپ بڑے ہو کر اس مشن کا پرچم اٹھا کے چلیں۔
پیارے بچوں، کربلا ہماری جنت کا وقت ہوا ختم۔ I really enjoy every segment of my program اور مجھے پتا ہے کہ آپ لوگ نے بھی بہت انجوائے کیا ہوگا میری مزے مزے کی باتوں کو۔ ہم انشاءاللہ ایک نئے مہمان سے پھر ملیں گے۔ Only on Hathi TV، دیکھنا نہ بھولنا۔ خدا حافظ۔
کربو بالا میں دیکھا میرا حسین، ایک طرف کا دل ہزاروں، ایک طرف تنہا حسین۔ مقتل کربو بالا میں دیکھا میرا حسین، مقتل کربو بالا کہاں سکا اہل بیت عباس جری، ہو کہاں سکا اہل بیت عباس جری، لڑ رہا پیاسا میرا حسین، مقتل کربو بالا میں۔ صبح سے کتنے ہی لاشے تم اٹھا کر لا، صبح سے کتنے ہی لاشیں تم اٹھا کر لائے ہو، دشت سے تم کو اٹھانے کون آئے گا حسین، دشت
سے تم کو اٹھان کون آئے گا حسین، مقتل کر بو بالا میں، شام غربت ڈل رہی ہے، چادر جن کو ہے، شام غربت ڈل رہی ہے، چادر جن کو ہے، خیمہ سادات پر ہونے کو ہے بلوا حسین، مقتل کر بو بالا قاتل چلا ہے، صرف تم پر ہی کہاں، زخم خوردہ ہے محمد، حیدر و زہرا حسین، مقتل کر بو بالا صدا یا حسین، مقتل کر بو بالا میں، سر تلاوت کر رہا ہے نوک نزا پر امام، سر تلاوت کر رہا نوک نزا پر امام، معجزہ ہے یہ بھی لیکن کوئی نہ سمجھا حسین، معجزہ ہے یہ بھی لیکن کوئی نہ سمجھا حسین، مقتل کر بو بالا میں، سب غلاموں کے لیے خرم دعا گو ہے صدا، سب غلاموں کے زہرا میرا مولا حسین، مقتل کر بو بالا میں، دیکھا میرا حسین،
کربلا ہماری جنت، کربلا روشنی ہے، کربلا ہماری جنت، کربلا روشنی ہے، مرکز آرزو ہے، مرکز آرزو ہے، حاصل جستجو ہے کربلا ہماری جنت کربلا روشنی ہے کربلا ہماری جنت کربلا روشنی ہے